यरमिया अध्याय 15, यरमिया अध्याय 15 पद 1। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए। यहां देखिए कि जब भी परमेश्वर एक आदर्श मध्यस्थता की प्रार्थना का मानवीय उदाहरण देता है, तब वो मूसा और एलिया का ही उदाहरण क्यों देता है? मूसा और एलिया में एक विशेष गुण था कि दोनों में परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए कान थे। जब मूसा जंगल में था और उसने उस जलती हुई झाड़ी को देखा, तब वो उसके निकट आया और परमेश्वर ने उससे उस झाड़ी में से बात की। उसने परमेश्वर की वाणी को सुना। परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए उसके कान तैयार थे। प्रार्थनाशील व्यक्ति, प्रार्थनाशील सामर्थी व्यक्ति वे होते हैं जो परमेश्वर की वाणी सुनने के अभ्यस्त होते हैं। प्रार्थना का एकमात्र उद्देश्य है कि सदा परमेश्वर की इच्छा पूरी की जाए, अपनी नहीं। परमेश्वर कोई जिन्न नहीं है जैसा हम अधिकांश समय सोचते हैं और उसके पास आते हैं, परमेश्वर मेरी तीन इच्छाएं हैं, उन्हें पूरी कर दे। आपने उन तीन मनुष्यों की कहानी सुनी होगी जो एक टापू में फंस गए थे और मरने पर थे। तभी समुद्री किनारे पर एक बोतल तैरती आई। एक व्यक्ति उसे उठा लाया। उसने उसे रगड़ा तो एक जिन निकलकर बाहर आया और बोला, मैं तुम्हें तीन वर दूंगा। पहला व्यक्ति बोला, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं घर पहुंच जाऊं और अपने बिस्तर में लेट जाऊं। दूसरा व्यक्ति ने कहा, मैं तो इटली जाकर सड़कों के किनारे कॉफी पीने की इच्छा रखता हूं। ओह, रोम में कॉफी। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं अपने दोनों मित्रों के बिना अकेलापन महसूस कर रहा हूं, काश वे भी मेरे साथ होते। इस कहानी का सबक आप समझ रहे हैं। हम अपनी इच्छाओं से संसार में अव्यवस्था फैला सकते हैं। इस कारण प्रार्थना हमारी इच्छा की पूर्ति का साधन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा कर ही देगा। शमूएल जब छोटा ही था तब उसकी माता उसे परमेश्वर की सेवा में समर्पित करके मंदिर में छोड़ गई थी। उसने सोते सोते पुकार सुनी, शमूएल, शमूएल। वो तुरंत भागकर एली के पास गया और उससे पूछा, क्या तूने मुझे पुकारा? नहीं, मैंने तो तुझे नहीं पुकारा, जाकर सो जा। वो जाकर सो गया। उसने फिर सुना, शमूएल, शमूएल। वो फिर एली के पास गया, क्या तूने मुझे पुकारा? नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाकर सो जा। उसने फिर वही पुकार सुनी। वो एली के पास फिर गया। एली ने उससे कहा, अब ये उत्तर देना, प्रभु कह, तेरा दास सुनता है। इस बार जब उसने पुकार सुनी तो कहा, कह प्रभु, तेरा दास सुनता है। परमेश्वर ने उसे एली के अपराधों के बारे में कहना आरंभ किया। सुबह एली ने उससे पूछा कि रात की घटना क्या थी। वो अत्यधिक दुविधा में था कि क्या कहे। हमारा विचाराधीन विषय यह है कि उसने परमेश्वर की वाणी को सुना। वो उसको सुनने के लिए तैयार था। उसके कान सुनने के अभ्यस्त थे। प्रार्थनाशील व्यक्ति वे होते हैं जो परमेश्वर की वाणी सुनने के अभ्यस्त होते हैं। तो यहां परमेश्वर ने दो उदाहरण काम में लिए हैं, मूसा और शमूएल। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके कान सुनने के अभ्यस्त थे। एक सुनने वाला कान सदा प्रार्थनाशील जीवन के पीछे चलता है या प्रभावी प्रार्थना के पीछे। परमेश्वर की वाणी सुनना, परमेश्वर की इच्छा को जानना एक प्रभावी प्रार्थना की नींव डालते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मूसा और शमूएल मध्यस्थता की प्रार्थना के महान आदर्श है। आपको ध्यान होगा कि मूसा ने इसराइल के वंशजों के लिए मध्यस्थता की थी, प्रभु उनके अपराधों को क्षमा कर, यदि नहीं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरा नाम अपनी स्मरण पुस्तिका में से मिटा दे। वो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ था। परमेश्वर कह रहा है, यद्यपि मूसा और शमूएल मेरे समक्ष खड़े होकर विनती करें, तो भी मेरा मन उनके लिए नहीं पिघलेगा। उन्हें मेरी निगाहों से दूर कर दे, उन्हें जाने दे। यरमिया अध्याय 15 पद 2 से लेकर 4 तक। और यदि वे तुझसे पूछे कि हम कहां निकल जाएं, तो कहना कि यहोवा यूं कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंधुए होने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़ कर खाने के लिए मैदान के हिंसक जंतु, यहोवा की ये वाणी है। और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। अब वो पूर्व काल का उल्लेख कर रहा है, यरमिया अध्याय 15 पद 4। मनुष्य के कारण होगा, यही तो वो दुष्ट राजा था, हिजकिया का पुत्र मनुष्य, जिसने मूर्ति पूजा को यहूदा में बढ़ावा दिया था। यरमिया अध्याय 15 पद 4 से लेकर 6 तक। ये हिजकिया के पुत्र के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोक करेगा? कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर मुड़ेगा? यहोवा की ये वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूं। यहां एक अत्यधिक ध्यान देने योग्य पद है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ना तो बदलता है ना ही पछताता है। गिनतियों अध्याय 23 पद 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हम परमेश्वर के विषय में चर्चा करते हैं तो हम मनुष्य के शब्दों में सीमित रह जाते हैं। इस कारण हम परमेश्वर के कार्यों को मानवीय शब्दावली में व्यक्त करते हैं। इस कारण हमारी दुविधा यह है कि परमेश्वर के बदलने के स्वभाव को क्या कहें, क्योंकि मुझे अंत में आकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर बदल गया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर की पहचान तो आदि से ही है। परमेश्वर नहीं बदलता है, वो सर्व ज्ञानी है, ये उसका पूर्व ज्ञान है। अतः मेरी समझ से ऐसा लगता है कि परमेश्वर बदल गया है। उसने कह दिया है कि दंड दिया जाएगा। जब मनुष्य प्रार्थना करता है और पश्चाताप करता है, तब परमेश्वर दंड को टाल देता है, और हम कहते हैं, ओ परमेश्वर ने इरादा बदल दिया। ऐसा नहीं है, वो तो पहले से जानता था कि मनुष्य पश्चाताप करेगा और उसे अपने दंड को टालना होगा। सत्य तो यह है कि वो बदला नहीं। मुझे ऐसा लगा कि वो बदल गया, और उसको मनुष्य अपने सीमित ज्ञान में व्यक्त करता है। परमेश्वर का वर्णन करने के लिए हमारे पास अलौकिक भाषा तो है नहीं। यरमिया अध्याय 15 पद 7 से लेकर 9 तक। मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है, उन्होंने कुमार को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वंश कर दिया और नाश भी किया है। उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई है। उनके जवानों की माताओं के विरुद्ध दोपहरी ही को मैंने लुटेरों को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया है। 7 लड़कों की माता भी बेहाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में उसकी मौत हो चुकी है। यरमिया अध्याय 15 पद 9 और 10। उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया, और जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ ऐसे मनुष्य को उत्पन्न किया जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। ना तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए और ना किसी से उधार लिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। निस्संदेह यरमिया द्वारा की गई बातें मन भावन नहीं थी। यरमिया की बातें सुनकर वे क्रोध से भर गए थे। परमेश्वर का भविष्यत वक्ता प्रायः जनमान्य नहीं होता है। मानव जाति अत्यधिक बैर उत्पन्न करती है, क्योंकि मनुष्य सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करता है। मनुष्य झूठ सुनना पसंद करता है। जब लोग परामर्श खोजते हुए आते हैं, तब झूठ सुनकर वे बड़े संतुष्ट से होते हैं। वे यही सुनना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, कर डालो, परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा, आपकी बड़ी प्रशंसा होगी, ओह आप एक महान परामर्शदाता हैं, मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूं। परंतु यदि वे आपके पास आते हैं तो आप उनसे कहे, देखिए यदि आप ऐसा करेंगे तो नरक के भागी होंगे, क्योंकि ये शारीरिक लालसा है और शारीरिक लालसाएं करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वे नरक के भागी होंगे। उचित होगा कि आप परमेश्वर के समक्ष अपना जीवन रखें। वे क्रोधित होकर अपशब्द करते हुए ठोकर मारते हुए चले जाते हैं। ये पादरी बहुत बेकार है, उसने सच कहा जिसे मैं सुनना नहीं चाहता था। मुझे तो चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती हैं। इसी प्रकार यरमिया उन्हें सच्चाई बता रहा था और झूठे भविष्यद्वक्ता उन्हें झूठ सुना रहे थे। वे लोकप्रिय थे और यरमिया अलोकप्रिय था। यरमिया अध्याय 15 पद 11। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा, विपत्ति और कष्ट के समय में शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। यद्यपि प्रजा का नाश होगा, एक भाग अवश्य बच जाएगा। वे बंदी बनाकर बाबुल ले जाए जाएंगे, परंतु वहां वे आराम में रहेंगे। ऐसा ही हुआ, बाबुल में वे समृद्ध हुए। सत्य तो यह है कि बाबुल में यहूदी बहुत समृद्ध हुए। वे मूल रूप से कृषक थे, परंतु जब वे व्यापार करने लगे तब उन्होंने बहुत बढ़िया व्यापार किया। शीघ्र ही बाबुल का सर्वोत्तम व्यापार उनके हाथ में था, वे बहुत धनी हो गए थे। यहां तक कि जब बाबुल से लौट आने का समय आया तब उनमें से अनेक आना नहीं चाहते थे। उनका कहना था, यरूशलेम में परिश्रम का जीवन कौन बिताएगा, अब हमने यहां अपनी जिंदगी बना ली है। उनमें से अनेक समृद्धि के कारण यरूशलेम लौटकर नहीं आए। यद्यपि वे बंधुआई में कष्ट उठा रहे थे, परमेश्वर ने कह दिया था कि बचे हुओं के साथ सब अच्छा होगा। यरमिया अध्याय 15 पद 12 से लेकर 14 तक। क्या कोई पीतल या लोहा उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? तेरे सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं, मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने बिना दाम दिए लुट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि वो शत्रुओं के हाथ ऐसे देश चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती है, क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी है और वो तुमको जलाएगी। बाबुल की बंधुआई की पूर्व घोषणा करते हुए यरमिया की प्रतिक्रिया कैसी है, देखिए यरमिया अध्याय 15 पद 15। हे यहोवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे ना उठा ले, तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। ये तो ठीक है, यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 5 पद 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद् वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु यीशु मसीह यरमिया के बारे में ही कह रहा था। यरमिया कह रहा था, परमेश्वर तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। यरमिया अध्याय 15 पद 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए ऐसा कह सकते हैं? मेरे लिए तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। मेरे लिए ये आनंद और हर्ष का कारण है। परमेश्वर का वचन कैसे मन भावन है? मैं परमेश्वर के वचन में सत्य की खोज से कैसा आनंद प्राप्त करता हूँ, क्योंकि वो मेरी आत्मा और मेरे प्राण को पोषित करता है। वचन को पढ़ना, अध्ययन करना, उसमें मगन हो जाना मेरे मन का आनंद और हर्ष है। ऐसा लगता है मैंने उसे खा लिया। यरमिया कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। यरमिया अध्याय 15 पद 16 से लेकर 21 तक। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना, और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपना बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं, यहोवा की ये वाणी है। मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। परमेश्वर यरमिया को एक प्रतिज्ञा देता है। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपना बनाऊंगा, मैं तेरे लिए पीतल की दृढ़ सुरक्षा दीवार बनकर रहूंगा। जो तेरे विरुद्ध युद्ध करने आएंगे वो विजयी नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने भविष्य के लिए दी है। दूसरी ओर ये था कि भविष्यद्वक्ता को बनाए रखना, क्योंकि उसने परमेश्वर का संदेश यथावत दे दिया था जो प्रभु के नाम में था। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम तुझे इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमें दिया कि तेरे वचन को सीखें। ओह प्रभु, काश हम तेरे वचन को अपना लें। ये हमारे मन के हर्ष और आनंद का कारण होगा कि हम तुझसे सीखकर तेरी आज्ञाओं पर चले। परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तेरी आज्ञाओं पर चले। परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तेरे वचन को सुनकर उसका अनुसरण करें। हम केवल सुनने वाले बनकर भ्रम में ना पड़ जाएं, परंतु यथार्थवादी बने। परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम इन निराशा के दिनों में तेरे सम्मुख प्रार्थना में निराशा व्यक्त करें। प्रभु जी, हमें प्रार्थनाशील मनुष्य बना, अपने वचन पर दृढ़ व्यक्ति बना। इन अंतिम दिनों में प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम अन्यों को पृथ्वी पर आने वाले विनाश से बचा सके, कि वे तेरे साथ तेरे राज्य में रहे। प्रभु, हमें तेरे सत्य की गवाही देने वाले साधन बना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।